हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन आज झलक के चेहरे पर मायूसी देखकर प्राची को काफी हद तक बुरा लगा और उसने उससे पूछा, आखिरकार बात क्या है, तुम इतना ज्यादा उदास क्यों हो? आर्यन उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। आर्यन मोस्टली रात को 9 बजे के बाद ही नाइट क्लब में आया करता था। तब झलक नीरज और प्राची दोनों की ओर देखा, एक बार और कोशिश की और हिचकिचाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन तभी प्राची झट से बोली, हम पिछले 3 से 4 दिनों से देख रहे हैं, तुम कुछ उदास हो और कहीं खोई खोई सी रहती हो, बताओ ना क्या बात है? क्योंकि झलक हमेशा क्लब में चहकती हुई रहा करती थी, सबसे हंसी मजाक करती रहा करती थी, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों तक वो किसी से ढंग से बात नहीं कर रही थी। क्योंकि झलक को ऑलरेडी 5 से 6 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो उस आदमी को खोज नहीं पाई थी और ना ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता लगा पाई थी कि वो आदमी आखिरकार कौन था। और साथ ही साथ वो 5 टाइम फूड डिलीवरी का काम किया करती थी और आज इन सब मामलों को हुए 5वां दिन हो चुका था। फिर भी झलक के दिलो दिमाग से अभी तक उस आदमी की शक्ल नहीं गई थी जिस आदमी की उसने जान बचाई थी। हालांकि प्रॉपर्ली उसने उस आदमी को नहीं देखा था क्योंकि उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन झलक की याददाश्त बहुत तेज थी, वो आसानी से उसे हर हाल में पहचान सकती थी। वेल, झलक को इस तरह से सोचते हुए देखकर प्राची ने उसके सामने अपने हाथों की चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो मैडम, कहाँ खो गई हो तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ ना क्या बात है? वेल, अभी इस वक्त झलक अपने साथ काम करने वाले प्राची और नीरज के साथ मॉनिटर रूम में बैठी हुई थी। जब भी झलक अपना काम खत्म कर लिया करती थी, वो नीरज के पास आकर मॉनिटर रूम में थोड़ी देर बैठ जाया करती थी। तभी नीरज ने भी प्राची की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, क्योंकि झलक के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, और वो सॉफ्ट वॉइस में बोला, क्या बात है चैम्प, प्राची ठीक कह रही है, तुम्हारे चेहरे पर ये मायूसी क्यों है? तब प्राची भी झलक को गौर से देखते हुए बोली, हाँ हाँ नीरज, तू ठीक कह रहा है यार, 2-3 दिन से देख रही हूँ झलक मैडम के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन देखो बात नहीं रही है, मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ। तब झलक उन दोनों की ओर देखकर मायूसी से बोली, क्या बताऊँ यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तुम जानते हो क्या हुआ? ये बोलकर झलक ने जो कुछ भी उसके साथ हुआ था और एक्सीडेंट वाले आदमी के केस को लेकर, साथ ही साथ उसने जो पैसे उस एक्सीडेंट वाले आदमी को अस्पताल में एडमिट करने के लिए जमा किए थे, उनके सारे डिटेल नीरज और प्राची दोनों को बता दिए थे। तब नीरज कन्फ्यूजन से बोला, आर यू श्योर, उसने तुम्हें पैसे देने का वादा किया था? तब झलक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने कहा ना कि उस कमीने आदमी ने मुझे पैसे देने के लिए वादा किया था। इतना ही नहीं, मैंने अपनी जेब से भी उसकी जान बचाने के लिए पैसे भरे, लेकिन वो धोखा देकर भाग गया। इससे अच्छा होता था कि मैं उस कमीने धोखेबाज की जान ही नहीं बचाती, क्योंकि उस वक्त झलक को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक तो उसके पिता मिस्टर सौलभ शर्मा कोमा में थे, जिसकी वजह से उसको हर दिन हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने पड़ते थे। इतना ही आकांक्षा के माता पिता मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय ने पैसे भी दिए थे, लेकिन फिर भी झलक का खर्च काफी ज्यादा था। एक तो शहर में आने के बाद उसने अपने भाई का एक छोटे स्कूल में एक प्राइवेट ट्यूशन में एडमिशन भी करवा दिया था, और वो अच्छी तरह से जानती थी मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय सिर्फ उसके पिता की सर्जरी और साथ ही साथ अपने हॉस्पिटल में रहने के लिए ही पैसे दे सकते हैं, लेकिन उसके भाई के स्कूल जाने के पैसे वो किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। और साथ ही साथ घर का खाना खर्चा, ये सारे काम झलक को ही देखने थे। इसके लिए उसने 5 टाइम नौकरी के साथ साथ एक बार में नौकरी करने का भी डिसीजन लिया था, क्योंकि इस नाइट बार में उसे पैसे अच्छे मिल रहे थे और जैसे तैसे उसने मेहनत करके जो सेविंग की थी, वो सारी सेविंग उसने उस घायल आदमी के लिए अस्पताल में जमा करवा दिए थे, तो इसलिए उसे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तब नीरज और प्राची ने उससे पूछा, अच्छा जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रही हो, क्या तुम्हें उसका नाम पता है और वो शख्स कैसा दिखता है? हालांकि भले ही झलक ने उसका खून से लथपथ चेहरा देखा था, लेकिन फिर भी झलक की याददाश्त बहुत तेज थी और वो उसे हजारों में भी पहचान सकती थी। और वो कुछ पल खामोश होकर बोली, मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद है, भले ही वो बेहोश था, खून से लथपथ था। एक और बात, मुझे हॉस्पिटल से पता चली है कि आधी रात के बाद उस आदमी को लेने के लिए कम से कम कितने ही सारे काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड वहां आए थे। वहां की हेड नर्स ने मुझे ये सारी बात बताई थी। अब जैसे ही प्राची और नीरज ने ये सुना, वो दोनों चौंक गए कि आखिर इतना बड़ा आदमी आखिरकार कौन हो सकता है। तब झलक सीरियस लुक देते हुए बोली, लेकिन मैं उसे अच्छे से पहचान सकती हूँ। वो अभी तीनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक झलक की नज़र मॉनिटर पर पड़ी, क्योंकि इस वक्त नीरज जिस मॉनिटर रूम में था वहाँ पर नाइट क्लब में आने जाने वाले सभी लोगों को वहाँ से आसानी से देख रहा था कि कोई सस्पिशियस तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही अब झलक की नज़र मॉनिटर रूम पर आ रहे एक शख्स पर पड़ी, झलक की आँखें हैरानी से फैल गई थीं और गुस्से से उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई, क्योंकि वो इंसान वही था जिसका उस रात एक्सीडेंट हुआ था, जिसे झलक ने उस रात बचाया था। अब तो झलक उस आदमी को देखकर हाथों के इशारे से चीखते हुए बोली, नीरज नीरज, प्राची, वो देखो, वो रहा वो आदमी, यही वो कमीना आदमी है, इसे ही मैंने बचाया था, यही है वो आदमी। अब जैसे ही झलक ने ये बताया, नीरज की तो आंखें चौड़ी हो गई थीं, जैसे अभी और इसी वक्त बाहर निकल जाएंगी। वहीं प्राची के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। नीरज प्राची ने एक दूसरे को हैरत से देखा और फिर से झलक की बातों को गौर से सुनने लगे। वो दोनों सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि झलक जिस आदमी की तरफ इशारा कर रही थी और झलक ने उस आदमी की जान वाकई झलक ने बचाई थी, उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं अब प्राची और नीरज दोनों का ही गला सूखने लगा था, क्योंकि झलक को वहाँ पर काम ज्वाइन किए अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन वो दोनों तो वहाँ शुरू से काम कर रहे थे, उन्हें तो वहाँ काम करते हुए साल हो गए थे, तो उस आदमी को वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे। तभी नीरज अपना थूक निगलते हुए हड़बड़ा कर बोला, आर यू श्योर झलक, तुम जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तब झलक नीरज के इस तरह का सवाल सुनकर हैरान हो गई और उसे हूरते हुए कोल्ड लुक देते हुए बोली, व्हाट यू मीन, किस तरह से बात कर रही हूँ? हाँ, अरे यही वो कमीना झूठा इंसान है यार, इसकी जान मैंने बचाई थी, कमीना धोखेबाज कहीं का। एक तो मैंने इसकी जान बचाई और ये अस्पताल से ही रातों रात गायब हो गया, और ऊपर से मुझे पूरे 10 का चूना भी लगा गया, साला फ्रॉड कहीं का। इतना बोलकर झलक की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहीं प्राची ने तुरंत झलक के कंधे पर हाथ रखा और डरते हुए बोली, यार तू एक बार फिर से सोच ले, तूने वाकई इस इंसान के बारे में बात कर रही है ना?
अब तो झलक उन दोनों की बातें सुनकर अब थोड़ा सा इरिटेट होकर बोली, तुम दोनों को हो क्या गया यार? जब मैं तुम दोनों को बार बार कह रही हूँ कि ये वही इंसान है जिसकी मैंने जान बचाई थी, तो तुम दोनों मुझे इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम दोनों मेरी परेशानी पूछ रहे थे, और अब मैं तुम दोनों को परेशानी बता दिया तो तुम दोनों इतना अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रहे हो यार? झलक अब उन दोनों पर भी गुस्सा होने लगी थी। झलक अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, मैंने कहा था ना कि मैं इसे किसी भी हालत में पहचान सकती हूँ, ये वही आदमी है, भले ही अब इसने अपने मुंह पर लगा हुआ खून धो लिया हो, लेकिन मैं इसे नहीं भूल सकती हूँ।